जब से पृथ्वी ने आर्यांश को अपनी जायदाद और फैमिली से बेदखल किया था, उसके बाद से वो किसी की भी मदद नहीं लेना चाहता था। तभी आज तक 3 सालों में कभी आर्यांश ने अपने बारे में किसी को नहीं बताया था। 3 साल बाद जब दीवा उससे मिली और आर्यांश को इतनी मुश्किल स्थिति में देखा, तब उसने समीक्षा को कॉल करके आर्यांश के बारे में बता दिया था। दीवा के नज़रिए से वो ये सब उसकी मदद के लिए ही कर रही थी। वहीं जब समीक्षा को आर्यांश के बारे में पता चला, तब वो तुरंत आर्यांश से मिलने जाने की तैयारी करने लगी। वर्तिका और मनीष दोनों ने ही समीक्षा को आर्यांश के पास जाने से रोका, क्योंकि अगर आर्यांश उनसे मिलना चाहता तो पहले ही अपने बारे में बता देता। पर समीक्षा ने किसी की नहीं सुनी। सुबह के 8 के करीब समीक्षा एक लंबा सफ़र तय करके पेनलिंग पहुँच गई थी। छोटे शहरों में लोगों की दिनचर्या जल्दी शुरू हो जाती थी। जब समीक्षा वहां पहुंची, लोग अपने काम के लिए निकल रहे थे। आसपास की दुकान और बाकी काम से जुड़ी चीज़ें खुल चुकी थीं। दीवा ने उसे एड्रेस तो दिया था, लेकिन फिर भी वो जगह उसके लिए नई थी और उसे आर्यांश का घर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ कितनी ठंड है, उसे रहने के लिए यही जगह मिली क्या? ये तो ठीक से डिवेलप तक नहीं है, पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रहा होगा, समीक्षा ने इधर उधर देखते हुए कहा। आसपास काफ़ी छोटे घर थे, पर समीक्षा के हिसाब से आर्यांश उस तरह की जगह पर कभी नहीं रहने वाला था। वो अचानक से किसी भी घर में घुसकर आर्यांश का पता नहीं पूछ सकती थी। लगता है मुझे दीवा ने ठीक से एड्रेस दिया नहीं, आखिर वो भी तो इस जगह पर नहीं होगी। अगर मैं आसपास के लोगों से आर्यांश के घर के बारे में पूछूं तो वो मुझे बता देंगे क्या? समीक्षा ने उलझन भरे स्वर में खुद से कहा। फिर उसने अपना सिर झटक कर हल्का सा हंसकर कहा, शायद इतने वक्त बाद आर्यांश से मिलने के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो रही हूँ। वो उसके घर के बारे में क्यों नहीं जानेंगे? आखिर आर्यांश कपूर को कौन नहीं जानता? समीक्षा के चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट थी। उसने अपने कदम सामने के जनरल स्टोर की तरफ बढ़ाए और वहां जाकर मुस्कुराकर नरम लहजे में पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप आर्यांश कपूर को जानते हैं? उसका घर कहाँ है? अरे मैडम जी, ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ ज़्यादातर सब एक दूसरे को जानते हैं, और आर्यांश को भी, बहुत ही मेहनती लड़का है वो, दुकान पर खड़े आदमी ने हंसकर कहा। उसके पास में एक बूढ़ी औरत भी खड़ी हुई थी। वो उलझन भरी नज़रों से समीक्षा को देख रही थी। तभी उस दुकानदार ने उसे समझाते हुए कहा, अरे ये सुमन जी के गोद लिए बेटे की बात कर रही है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें झेली हैं और लंबे टाइम बाद अपने गांव में आई थी। उनका बेटा उनका ध्यान रखने के लिए सच में बहुत मेहनत कर रहा है और कहना पड़ेगा उस अनाथ को पालकर उन्होंने किसी तरह की गलती नहीं की। क्या अनाथ? समीक्षा ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई दूसरा आर्यांश होगा, मैं जिसके बारे में पूछ रही हूँ वो अनाथ नहीं है। इस गांव में इस नाम का सिर्फ एक ही शख्स है जो कि सुमन जी के साथ उनके पैतृक घर में रहता है। आप उनके घर का पता पूछ रही थी ना, इस गली में आगे सीधे सीधे जाइएगा, बाईं दिशा में मुड़ने के बाद सामने उनका घर नजर आएगा। उस आदमी ने आर्यांश के घर का पता बताया। समीक्षा पूरी तरह उलझन में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें थैंक्स बोलने के बाद वो उसके बताए पते के अनुसार चलने लगी। उन्होंने आर्यांश को अनाथ क्यों कहा और बहुत मेहनत कर रहा है से क्या मतलब? उनकी बातें बहुत अजीब थीं। आई होप मेरा बेटा ठीक हो और मैं जिस घर में जा रही हूँ वो आर्यांश का ही घर हो, समीक्षा ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसके लिए एक एक कदम उठाना भारी साबित हो रहा था। अगले 10 मिनट में वो उस आदमी के बताए हुए घर में पहुंच चुकी थी। हाँ, वो घर बाकी घरों से थोड़ा बड़ा था और उसकी हालत भी ठीक थी, लेकिन वो घर आर्यांश के रहने के हिसाब से अभी भी सही नहीं लग रहा था। अंदर जाने के बजाय समीक्षा दरवाजे पर ही रुक गई थी। उसने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, अंदर जाना चाहिए या नहीं? इस घर को देखकर यही लग रहा है कि आर्यांश यहाँ नहीं रहता होगा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि इस गांव में आर्यांश नाम का एक ही लड़का है। उसने आर्यांश को अनाथ भी कहा, पक्का कोई और होगा, लेकिन फिर भी मेरे दिल की गलतफहमी दूर होना ज़रूरी है। समीक्षा ने अपनी आंखों को कुछ पल के लिए कसकर बंद किया और खुद को अंदर जाने के लिए तैयार किया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, हैंडल घुमाते ही लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया था, और जैसे ही समीक्षा ने दरवाज़ा खोला, उसके सामने आर्यांश ही खड़ा हुआ था जो काम पर जाने के लिए तैयार था। अचानक समीक्षा को अपने सामने देखकर आर्यांश को झटका सा लगा, लेकिन साथ ही उसे ये समझते एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगा कि समीक्षा को यहाँ का पता किसने दिया होगा। इसका मतलब वो सही कह रहे थे और तुम यहीं पर रहते हो, समीक्षा ने भारी आवाज में कहा और आर्यांश को जी भरकर देखने लगी। उसने काफी सिंपल से कपड़े पहने हुए थे। समीक्षा जल्दी से दौड़ कर गई और उसने आर्यांश को अपने गले से लगा लिया था, लेकिन आर्यांश के हाथ अभी भी बिल्कुल सीधे थे। उसके चेहरे के भाव भी काफी सर्द हो गए थे। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आर्यांश ने धीमी सख्त आवाज में कहा। समीक्षा तुरंत उससे अलग हुई और शिकायती लहजे में बोली, क्या मतलब नहीं आना चाहिए था? लोग तुम्हारे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर आर्यांश? तुम इस जगह पर क्यों रह रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी और कोई कुछ भी कहे तुम मेरे साथ चल रहे हो। समीक्षा ने आर्यांश का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगी, लेकिन आर्यांश अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। समीक्षा ने पलटकर हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा तो आर्यांश ने तुरंत नामे सिर हिला दिया था।
मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ और आई रिक्वेस्ट यू कि आप भी यहाँ से चली जाइए, आर्यांश ने उन्हें समझाते हुए कहा। उसकी जिद और सख्ती देखकर समीक्षा की आंखें भर आई थीं। वो सिसकती आवाज में बोली, तुम हमें इस तरह छोड़कर कैसे आ सकते हो और अभी भी जिद कर रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो आर्यांश? मिसेस वर्मा को अपनी माँ मानकर उन्हें हमेशा साथ रखा और मेरा क्या? मैं पिछले 3 सालों से तुम्हारा चेहरा तक देखने के लिए तड़प रही हूँ। मेरी क्या गलती रही है जो तुम मुझे सजा दे रहे हो? समीक्षा की आंखों में आंसू आ गए थे। आर्यांश ने आगे बढ़कर उन्हें सीने से लगाया और धीरे धीरे उनकी पीठ थपथपाने लगा। मैं किसी को सजा नहीं दे रहा हूँ मॉम, आप अच्छे से समझती हैं। मैं अगर वहां से नहीं आता तो और गलतियां करता। अब तक मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर चुका होता। वो मुझसे नफरत करती और ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होता। आर्यांश ने उन्हें नरम लहजे में समझाया। तुम्हारे दूर आने से कौन सा कुछ बदल गया है? उल्टा तुमने अपनी जिंदगी मुश्किल बना ली। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें इस तरह इस हाल में देखकर मुझे कितना दुख हो रहा है, समीक्षा ने शिकायत करते हुए कहा। आर्यांश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने समीक्षा को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में काफी कुछ चल रहा था और वो मन ही मन बोला, कुछ नहीं मॉम, बहुत कुछ बदल गया है। 3 साल पहले भी मैं उसके लिए तड़प रहा था और वो अच्छे से जानती थी कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी उसे मुझ पर तरस नहीं आया। और आज देखिए, मेरी लाइफ आसान करने के लिए उसने आपको बुला लिया। बेवकूफ लड़की, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? समीक्षा ने आर्यांश के चेहरे की तरफ देखकर पूछा, तो आर्यांश ने फिर से इनकार करते हुए सिर हिला दिया था। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी यहीं पर रहने वाली हूँ। अपनी मुश्किल जिंदगी तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं, अब अपनी माँ के लिए भी चुनी है। समीक्षा भी जिद पर अड़ गई थी।
आर्यांश ने उनकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन समीक्षा उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो आर्यांश से अलग होकर अंदर जाने लगी। तभी आर्यांश ने पीछे से हल्की तेज आवाज में पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मेरे बारे में किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, मैंने पहले ही अपने डिटेक्टिव सब जगह छोड़ रखे थे, उनमें से ही किसी को तुम्हारे बारे में पता चला था, समीक्षा ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया और अंदर जाने लगी। आर्यांश के होठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कुराहट थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, और जैसे मुझे पता ही नहीं कि आपके सो कॉल्ड डिटेक्टिव से कैसे बचना है, इतने वक्त में मेरे बारे में किसी को पता नहीं चला और जैसे तुमने यहाँ कदम रखा, अगले दिन मेरी फैमिली यहाँ पहुँच गई। ये तुमने ठीक नहीं किया दीवा गोयंका। आर्यांश ने समीक्षा को वहीं पर छोड़ा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे। वो दीवा के घर के आगे पहुंचा तो दीवा का घर लॉक था। जाहिर सी बात थी कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। आर्यांश आज अपने काम पर जाने के बजाय दीवा के पास हॉस्पिटल जा रहा था और वो दीवा की इस हरकत पर अच्छा खासा गुस्से में था। हॉस्पिटल पहुंचने पर इतनी सुबह भी दीवा के केबिन के आगे 4-5 पेशेंट बैठे हुए थे और आए जा रहे थे। दीवा से मिलना आसान नहीं था और मजबूरन आर्यांश को पेशेंट की लाइन में बैठकर अपनी बारी के आने का इंतजार करना पड़ा। पूरे 40 मिनट वहां बैठे रहने के बाद आर्यांश के आगे की लाइन खत्म हो चुकी थी। दीवा के अंदर से तेज आवाज आई, अंदर आ जाइए। इन 40 मिनट में इंतजार करते हुए आर्यांश की चिड़िक और भी बढ़ गई थी। पूरे टाइम वो समीक्षा के बारे में सोच रहा था, जो जबरदस्ती वहां आ गई थी और अब वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी। समीक्षा तो बस शुरुआत थी। आर्यांश अच्छे से जानता था कि उसके बाद और कोई ना कोई उसकी फैमिली से वहां जरूर आने वाला था। आर्यांश की जिंदगी देखकर वो उस पर तरस खाते और साथ चलने की जिद करते, जो उसे कभी बर्दाश्त नहीं था। आर्यांश की बारी आते ही उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए थे और अंदर आते ही सबसे पहले उसने दरवाज़ा बंद किया। अचानक आर्यांश को अपने सामने देखकर दीवा हड़बड़ा गई थी और अपनी चेयर से जल्दी से उठकर बैठ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये दरवाज़ा क्यों बंद किया है? दीवा ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों, मैं बीमार नहीं हो सकता डॉक्टर, आर्यांश भौहें चढ़ाकर बोला और उसके सामने अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया था। उसका चेहरा देखकर साफ जाहिर था कि वो बीमार तो किसी हाल में नहीं है, लेकिन हाँ, काफी गुस्से में जरूर है। गुस्से में उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। आर्यांश की हरकतें देखकर दीवा को वो दिन याद आ गया जब पहले भी वो उसका इंतजार करते हुए हॉस्पिटल की लाइन में बैठा था और जबरदस्ती बीमार होने का कहकर उसके केबिन में घुस आया था। तुम कोई बीमार नहीं हो और मैं तुम्हारी ट्रिक्स अच्छे से जानती हूँ, मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो, दीवा ने सख्त आवाज में कहा। उन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में उलझी हुई थी। आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा, एग्जैक्टली, यही कहने के लिए आया था, मेरी लाइफ में दखल देना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने क्या किया है? दीवा झट से बोली और नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। वो नर्वस होकर अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या मिसेस कपूर इतनी जल्दी यहाँ आ गई हैं? मैंने उन्हें साफ मना किया था कि मेरा नाम ना ले, फिर उन्होंने आर्यांश को मेरे बारे में बता दिया। पता नहीं ये क्या सोच रहा होगा, कहीं इसे ये तो नहीं लग रहा कि मुझे इसकी परवाह है। आर्यांश दीवा के हर हाव भाव को अच्छे से नोटिस कर रहा था। उसने सार्कास्टिकली सिर हिलाया और बोला, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जिसे ये समझ ना आए कि पिछले 3 सालों में किसी को मेरे बारे में पता नहीं चला और अचानक तुम्हारे यहाँ आने पर मेरी फैमिली यहाँ पहुँच गई है। आई वॉन्ट यू दीवा, मेरी लाइफ से दूर रहो, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, दीवा ने उसकी तरफ देखकर शांत लहजे में कहा। नहीं चाहिए, आर्यांश सीधे सीधे बोला, ना किसी की हेल्प चाहिए और ना ही किसी का इंटरफेरेंस, हम अब अलग हो गए हैं, ये दूरियाँ तुमने ही चुनी हैं,
सब रिश्ते, नफरत और प्यार सब खत्म हो गया है। ऐसा कुछ मत करो जो मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर दे। और आई स्वेयर, इस बार मैं पास आया तो ना तो तुम बर्दाश्त कर पाओगी और ना ही मेरे पीछे हटने का कोई रास्ता होगा। आर्यांश ने सीधे सीधे धमकी देते हुए सर्द आवाज में कहा और फिर बिना उसका जवाब सुने वहां से चला गया था। आर्यांश के शब्द सुनकर दीवा के कदम लड़खड़ा गए थे और उसके जाने के बाद भी आर्यांश की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। दर्द दर्द दर्द, आर्यांश ने सही कहा, जब सब खत्म हो गया है तो दीवा को भी दूर रहना चाहिए। लेकिन अब दीवा कुछ करती है तो इसका मतलब यही होगा कि उसे अपनी शान जिंदगी पसंद नहीं है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा और उम्मीद है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगले पार्ट पर मिलते हैं।